एंड ब्रेन अर्थात मन और मस्तिष्क दो अलग अलग कर्मेंद्रियां हैं। मन आत्मा की एक चैतन्य किंतु सूक्ष्म इंद्रिय है और मस्तिष्क शरीर का एक जड़ स्थूल अंग है। मन का कर्तव्य होता है विचारों की उत्पत्ति करना और फलस्वरूप वे प्रकंपन अथवा वाइब्रेशन मस्तिष्क को ट्रांसमिट होते हैं, जहां से फिर अन्य कर्मेंद्रियों को सिग्नल्स मिलते हैं और वे यथानुसार कार्यान्वित होती हैं। उदाहरण के तौर पर जब हमारे मन में किसी को माफ कर देने का सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, तब ये फॉरगिवनेस के वाइब्रेशंस हमारे मस्तिष्क को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे कि हमारी ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स का फ्लो आरंभ हो जाता है और तब ये हैप्पी केमिकल्स हमारे संपूर्ण सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से फैल जाते हैं और तब हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा निश्चित ही श्रेष्ठ व्यवहार होता है। अतः अगर हमें सुखमय और शांतिमय जीवन की चाह है, तो हमें अपने मन को कंट्रोल करने की विद्या, जिसका नाम है राजयोग, उसे अवश्य सीखना होगा। स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है स्वयं को जानना या फिर सेल्फ रियलाइजेशन। जिस प्रकार एक व्यक्ति जब कार चलाना सीख जाता है, सभी कंट्रोल्स को जान जाता है, तब वह कैसे भी भीड़भाड़ वाले स्थान या फिर ऊंचे नीचे रास्ते को सुगम रीति तय कर लेता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार राजयोग वह टूल या यंत्र है जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से सेल्फ कंट्रोल करना सिखलाता है और जहां स्वयं पर नियंत्रण है, वहां ही लक्ष्य प्राप्ति का अवसर होता है। राजयोग से संबंधित और अधिक गुह्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी के विचार।
तो आज हम उसको देखेंगे कि योग की जो अलग अलग स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं, भई हम कहां तक पहुंचे हैं। पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, जिसमें से हर एक को गुजरना पड़ता है। एकदम कोई लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाता है और कोई ओवरनाइट प्रोसेस भी नहीं है कि आज से सोचा माना मन एकाग्र हो गया, नहीं। तो प्रथम अवस्था कौन सी है? चार अवस्था है। पहली अवस्था है जिसको कहते हैं मनन चिंतन, कि जहां हम मन को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बुद्धि भटक रही है और विचार भी आते हैं। तो मनन चिंतन की अवस्था थोड़ी देर के लिए टिक भी जाते हैं, लेकिन फिर वापस देखो तो मन भटकता रहता है। ये पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं रूह रूहान की अवस्था, जहां हम अपने आप में धीरे धीरे आत्मस्थिति में स्थित करते हैं और अपने सूक्ष्म स्वरूप द्वारा परमात्मा के साथ एक संबंध जोड़ते हैं और उसकी शक्ति का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिससे हम अपने कर्म में, व्यवहार में, जीवन में ये परिवर्तन को महसूस करते हैं। रूह रूहान का मतलब है रूह यानी आत्मा, आत्मा की परमात्मा के साथ एक वार्तालाप, दिल ही दिल का एक संवाद, उसको कहा रूह रूहान अवस्था। तीसरी अवस्था है जिसको हम कहते हैं एकाग्रता, कि जहां मन एकाग्र हो जाता है और उस परमात्मा में स्थित हो जाता है और चारों ओर वो वाइब्रेशंस फैलते हैं, एक सन्नाटा सा अनुभव होता है, एक शांति की शक्ति का अनुभव होता है। और चौथी अवस्था है जिसको हम कहते हैं अनुभूति की अवस्था, कि जहां मन स्थिर हो जाता है और उस परमात्मा के हर गुणों को, हर शक्तियों को अपने जीवन में अनुभव करना। मुख्य रूप से ये चार अवस्था है। उसमें अगर सबसे पहली अवस्था हम लेते हैं मनन चिंतन की अवस्था, ये मनन चिंतन की अवस्था क्या है? हम भी योग शुरू करते हैं ना, तो एकदम हमारा योग नहीं लग जाता है, क्योंकि इतने जन्मों के जो संस्कार है फालतू सोचने का, नेगेटिव सोचने का, वो एकदम से दूर हो जाएगा क्या? वो एकदम शांत नहीं होता है। तो यहां हम अच्छे विचार आपको देते भी हैं, लेकिन जब योग में बैठते हैं ना तो संस्कारों के कारण वो बुरे विचार भी आते हैं, तंग होते हैं। तब कई बार कई लोग क्या समझते हैं, पता नहीं मेरा योग सही है या नहीं है, पहले तो कभी मुझे ऐसे विचार नहीं आता था, अब कैसे आ रहा? तो इसलिए कहा कि इंसान के दिमाग में जब फालतू विचार निकलते हैं ना, व्यर्थ विचार आते हैं, तो वो व्यर्थ विचार वो विष है। जब वो विष निकलता है तो वो विष कैसा होता है? बड़ा कड़वा होता है। तो इंसान को लगता है पहले तो मुझे ऐसा कभी विचार नहीं आया और आज ये क्या हो गया है, इतने नेगेटिव विचार आए, पता नहीं मेरा योग तो लगने वाला है ही नहीं, ऐसे ना उम्मीद हो जाते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। ये योग की पहली अवस्था है कि पहले विष निकलेगा, लेकिन उस वक्त क्या करो, हिम्मत नहीं हारो कि मेरा योग तो कभी लगने वाला है ही नहीं। उस वक्त शिवजी को याद करो, शिव बाबा को याद करो, और वो सारा जहर भी उसको दे दो, अर्पण कर दो उसको। इसीलिए आपने देखा होगा शिव के मंदिर में कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं, अख के फूल चढ़ाए जाते हैं, जो सबसे जहरीला होता है। तो इसी प्रकार जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अंदर के जो आसुरी संस्कार है इतने जन्मों के, जो जहर है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे वो मन साफ होता जाएगा, और जब वो मन स्वच्छ हो जाएगा तो वो मन के अंदर फिर अच्छे विचार का अमृत बहने लगेगा। तो इसलिए उसमें डरना नहीं। तो ये स्थिति से हरेक को गुजरना ही पड़ता है। दूसरी अवस्था में जाते हैं जिसको कहा रूहान की अवस्था, आत्मा की परमात्मा के साथ एक वार्तालाप या संवाद। और इसलिए ये अपने आप से पूछना है कि मेरा उस परमात्मा के साथ कौन सा संबंध है, माता पिता का, स्टूडेंट और टीचर का, गुरु और शिष्य का, दोस्त का, साजन सजनी का, साथी का, और जब वो बच्चे खुद बड़े हो करके उनके बच्चे हो जाते हैं। पहले संबंध में माता पिता के साथ का संबंध, छठे संबंध में अपने बच्चे के साथ का संबंध। तो ये छह संबंध इंसान के अति निकट के संबंध हैं। अब उसमें परमात्मा के साथ हम कौन सा संबंध जोड़े, या सभी संबंध जोड़ सकते हैं? कोई एक संबंध अति प्रिय लगे तो वो संबंध भी ले सकते हैं, या सभी संबंध जोड़ सकते हैं? कैसे? जब पहले कहते हैं कि माता पिता का संबंध, अब जब माता पिता को याद करते हैं, आज अगर आपको कहा जाए कि आप अपने शरीर के माता पिता को याद करो, तो सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, कैसे याद करते, क्या याद करते उस वक्त? माता पिता को याद कैसे करते, क्या सोचते उस वक्त? हाँ, क्या सोचते हैं? माता पिता को याद करना सहज है ना, तो क्या सोचते हैं उस वक्त जब याद करते हैं? तो क्या सोचते हैं, कैसे याद करते हैं? हाँ, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सोचते नहीं है, मन चलता नहीं है। देखो, हमें पता ही नहीं कि हम क्या सोचते भी है। जब माता पिता को याद करते हैं तो मन खाली तो नहीं हो जाता है ना, जरूर कुछ सोचता है, लेकिन कभी हमने वो ख्याल ही नहीं किया या हमारे ध्यान में ही नहीं आया कि हम उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं। हमेशा जब बच्चा माँ बाप को याद करता है ना, तो कैसे याद करता है? उसके गुणों के आधार पर याद करता है। आज जब आप अपने माता पिता को याद करते हो तो कैसे याद करते हो कि मेरी माँ में इतनी त्याग की शक्ति थी कि घर में उसने सबके लिए त्याग किया, कहते हैं ना इसे, या कहेंगे उसके अंदर इतनी सहन शक्ति थी जो उसने सबके लिए सहन किया, या कहेंगे उसका व्यवहार इतना अच्छा था, सबको प्यार से समानता से चलाया, कहते हैं। तो माता पिता को जब याद करते हैं तो कैसे याद करता है बच्चा? गुणों के आधार पर। कैसे उनको पढ़ाते थे, कैसे उनको हर बात समझाया जाता था, किस प्रकार उनके उनको पालना देते थे, उन बातों को लेकर के याद किया जाता है। तो सोचते तो है हम, उनके गुणों के बारे में सोचते हैं। तो भगवान के साथ भी ये माता पिता का संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। भगवान तो गुणों में अनंत है, जितने भी गुणों के आधार पर उसको याद करना चाहो याद कर सकते हैं। दूसरा संबंध टीचर और स्टूडेंट का। आज एक बच्चा पढ़ता है तो किसको याद करता है? टीचर को याद करता है ना। बच्चा स्कूल से घर आएगा तो अपने माँ बाप से क्या बातें करेगा? आज मेरे टीचर ने ये पढ़ाया, ऐसा किया, ये मेरा टीचर ने दिया, टीचर की बातें सुनाता रहता है। कई बार देखा गया है कि किसी स्टूडेंट अगर पढ़ने में होशियार होते हैं तो टीचर उनको कितना सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। यहाँ भी कई भाई बहने आते हैं ना, हमसे कहते हैं, यहाँ एक एक बहनों को सुनो, भाइयों को सुना, इतना ज्ञान सुनाते हैं, इतना ज्ञान सुनाते हैं, ये ज्ञान आया कहाँ से? सोचो वो टीचर कैसा होगा जिसने हम लोगों को ऐसा बनाया है। दुनिया में टीचर तो एक स्टूडेंट को बनाता है, लेकिन यहाँ जितने भी बहने मिलेंगे, भाई मिलेंगे आपको, किचन में चले जाओ, भाई मिलेंगे जो परोसने वाले होंगे, वो भी आपको ज्ञान सुनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आपको ज्ञान सुनाएंगे यहाँ पर, तो सोचो वो टीचर कैसा है जिसने एक एक को ऐसा बनाया अपने जैसा, ज्ञान का भंडार। तो शुक्रिया अदा किसका? उस टीचर का, जिसने ज्ञान से इतना संपन्न बनाया है, जीवन बनाया है। वहां तो वो एक टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना सका 50 स्टूडेंट के क्लास में से, लेकिन यहाँ तो भगवान जब परम शिक्षक बनता है तो वो ज्ञान के गुह्य रहस्य सुना सुना करके एक एक को अपने जैसा बना देता है। इसी प्रकार वही परम सतगुरु है। दुनिया में कहा जाता है कि रामकृष्ण हमेशा भगवान को अपना परम सतगुरु समझते थे। और सतगुरु उसको कहा जाता है कि जो वरदानों से जीवन ऐसी बनाता है कि जिससे वो गति सदगति को पाता है, श्रेष्ठ गति को पाता है। यहाँ परमात्मा ही हमारा सतगुरु है, कोई मनुष्य गुरु नहीं है। यहाँ पर चौथा संबंध है दोस्त का संबंध। गीता के अंदर इसलिए दिखाया गया है कि अर्जुन ने उसके साथ कौन सा संबंध जोड़ा, दोस्ती का, सखा का। और सखा का संबंध ऐसा है जो उसमें समय पर, सच्चा दोस्त जो होता है समय पर खड़ा हो जाता है। जो समय पर चला जाता है उसको दोस्त कहेंगे? नहीं, उसको मित्र नहीं कहा जाता है। आज दुनिया में किसी का दोस्त अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना, तो बनाए उसका दोस्त प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसका चाल ढाल कैसा होगा ना? जैसे खुद ही प्राइम मिनिस्टर बन गया हो, दूसरों को भी कहने लगेगा अरे कोई काम हो तो बता देना, अपना ही दोस्त है। कितना नशा उसको रहता है। और जिसका दोस्त अगर खुदा बन जाए तो उसका क्या कहना, भगवान जिसका दोस्त बन जाए। लेकिन दोस्ती के भी कुछ आधार होते हैं, ऐसे ही दोस्ती नहीं होती। एक क्लास में 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबकी सबके साथ दोस्ती नहीं होती है। कुछ एक के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है। किसके साथ दोस्ती होती है हा? किसके साथ दोस्ती होती है? जहाँ समानता होती है। भगवान के साथ हमारी कोई समानता है या नहीं है? है? हा? भगवान के साथ दोस्ती जोड़ने के लिए कुछ समानता है हमारे अंदर या नहीं है? है? कौन सी समानता है? सबसे पहली समानता है स्वरूप की समानता, एक जैसा स्वरूप है। मैं आत्मा, वो भी आत्मा, परमात्मा है। जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो स्वरूप की समानता हो गई। दूसरी समानता गुणों की समानता, स्वभाव की समानता। वो परम पवित्र है, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। वो शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ। वो सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ। वो सर्वशक्तिमान है, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। वो ज्ञान का सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। वो आनंद का सागर है, मैं आनंद की स्वरूप। तो गुणों की समानता है, जो उसका गुण है वही मेरा गुण भी है। तो स्वभाव एक जैसा है, आत्मा का और परमात्मा का स्वभाव एक जैसा है। तो गुणों की समानता हो गई। और तीसरी समानता है, एक गांव के हैं हम, वो भी परम धाम का निवासी है और हम भी परम धाम के वासी है ना, तो एक गांव के हो गए ना। अब तीन तीन समानता है, अब भगवान के साथ दोस्ती जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं ना।
अगर किसी कुर्सी के चार पायों में से एक पाया भी ठीक न हो तो ऐसी इम्बैलेंस्ड कुर्सी पर बैठना असुरक्षित होगा। ठीक ऐसे ही आज की प्रवचन माला में आपने राजयोग का विधि पूर्वक अभ्यास करने हेतु दो अवस्थाएं ही सुनी हैं। हमारे अगले एपिसोड में आप राजयोग की अन्य दो अवस्थाएं जान सकते हैं।